नमस्ते, मैं आरफ हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। स्पेयर पार्ट्स पत्रकार जोशुआ डेविस की तथ्याधारित गैर कथात्मक पुस्तक है। इसका पूरा केंद्र वेस्ट फीनिक्स के कार्ल हेडन कम्युनिटी हाई स्कूल के 4 अनिर्दिष्ट दर्जे वाले मैक्सिकन अमेरिकी किशोरों ऑस्कर वास्केज, क्रिस्टियन आर्सेगा, लोरेंजो सांतियान और लुइस अरांदा की यात्रा है। वर्ष 2004 में वे समुद्र तलीय रोबोटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, जहां उनके सामने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे संसाधन संपन्न प्रतिद्वंदी है। उनकी टीम ने सीमित धन और कबाड़ से स्टिंकी नाम का रोबोट बनाया, लेकिन पुस्तक केवल अप्रत्याशित जीत का विवरण नहीं है। डेविस इन किशोरों के पारिवारिक इतिहास, गरीबी, विद्यालयी उपेक्षा, शिक्षकों के मार्गदर्शन और आव्रजन कानूनों से पैदा हुए निरंतर भय को साथ रखकर अमेरिकी सपने की असमान शर्तों की जांच करते हैं। प्रतियोगिता कथानक को गति देती है, जबकि उसके बाद के जीवन प्रसंग यह स्पष्ट करते हैं कि एक उपलब्धि नागरिकता, आर्थिक सुरक्षा या समान अवसर की गारंटी नहीं बनती। इसीलिए यह पुस्तक विज्ञान, शिक्षा और आव्रजन नीति के मानवीय संबंधों पर केंद्रित विश्लेषणात्मक कथा है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, कबाड़ से बना स्टिंकी और साधारण अभियांत्रिकी की उपयोगिता। स्पेयर पार्ट्स का सबसे दिखने वाला संघर्ष संसाधनों की असमानता है। कार्ल हेडन की टीम ने $1,000 से भी कम धन में उपलब्ध और फेंकी हुई वस्तुओं का उपयोग करके अपना समुद्र तलीय रोबोट बनाया, जबकि कुछ प्रतिद्वंद्वी प्रतिष्ठित संस्थानों तथा बड़े अनुदानों के सहारे आए थे। यह अंतर केवल बजट का नहीं था, इससे यह तय होता था कि किसके पास उपकरण, परीक्षण का समय, तकनीकी सलाह और असफल होने की लागत सहने की क्षमता है। डेविस टीम की उपलब्धि को किसी चमत्कारी प्रतिभा के रूप में पेश करने के बजाय सीमाओं के भीतर डिजाइन करने की क्षमता से जोड़ते हैं। स्टिंकी की प्रभावशीलता का आधार अनावश्यक जटिलता से बचना था। प्रतियोगिता में काम पूरा करने वाला सरल तंत्र दिखने में आकर्षक मगर अधिक जटिल तंत्र से बेहतर सिद्ध हो सकता है। यह विचार अभियांत्रिकी की एक व्यावहारिक कसौटी सामने रखता है। समस्या को ठीक समझना, उपलब्ध सामग्री को पहचानना और विश्वसनीय समाधान बनाना। पुस्तक यह भी बताती है कि कमी कभी अपने आप रचनात्मकता नहीं पैदा करती। रचनात्मकता तब विकसित होती है जब विद्यार्थियों को प्रयोग करने, गलती सुधारने और अपने उपायों पर भरोसा करने का अवसर मिले। इसलिए स्टिंकी का अर्थ केवल एक रोबोट नहीं, बल्कि कम लागत वाली उद्देश्य पर डिजाइन प्रक्रिया है। दूसरा, 4 विद्यार्थियों की जीत के पीछे सहयोग और शिक्षकीय मार्गदर्शन। पुस्तक का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि टीम की सफलता किसी एक विलक्षण छात्र की कहानी नहीं बनती। ऑस्कर, क्रिस्टियन, लोरेंजो और लुइस अलग पारिवारिक परिस्थितियों, कौशलों और आशंकाओं के साथ आते हैं। रोबोट बनाना उन्हें साझा लक्ष्य देता है, पर सहयोग अपने आप सहज नहीं हो जाता। उन्हें तकनीकी काम बांटना, निर्णयों पर सहमति बनाना, समय सीमा में काम करना और दबाव के बीच एक दूसरे पर निर्भर रहना सीखना पड़ता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक फ्रेडी लाजवर्दी और एलन कैमरन की भूमिका निर्णायक है। वे तैयार उत्तर थमाने वाले प्रशिक्षक नहीं है, बल्कि ऐसी परिस्थिति बनाने वाले मार्गदर्शक है जिसमें विद्यार्थी जटिल समस्या से जूझ सके। हाथों से काम, प्रतियोगिता की स्पष्ट चुनौती और वयस्कों का भरोसा पढ़ाई से दूर होते जा रहे विद्यार्थियों के लिए विज्ञान को ठोस तथा प्रासंगिक बनाते हैं। डेविस का संकेत है कि प्रभावी एसटीएम शिक्षा केवल महंगे उपकरणों पर निर्भर नहीं होती, उसमें प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, लगातार अभ्यास, जिम्मेदारी और विश्वसनीय मार्गदर्शन भी चाहिए। फिर भी पुस्तक शिक्षकों को अकेला नायक नहीं बनाती। मार्गदर्शन तभी फलता है जब छात्रों की मेहनत, पारस्परिक सम्मान और परिवारों के त्याग से उसका संबंध बने। इस तरह टीमवर्क यहाँ सामाजिक सहारा और तकनीकी कार्यपद्धति दोनों है। तीसरा, अनिर्दिष्ट दर्जा और अमेरिकी सपने की असमान शर्तें। स्पेयर पार्ट्स प्रतियोगिता की कहानी के माध्यम से अनिर्दिष्ट दर्जे वाले युवाओं की असुरक्षा को सामने लाती है। 4 छात्र बचपन में मेक्सिको से संयुक्त राज्य अमेरिका आए और फीनिक्स को अपना घर मानते हुए बड़े हुए। फिर भी उनका कानूनी दर्जा शिक्षा, नौकरी, यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर अनिश्चितता का साया डालता है। उनकी वैज्ञानिक क्षमता या विद्यालयी उपलब्धि इस बाधा को अपने आप समाप्त नहीं करती। यही पुस्तक के शीर्षक में मौजूद अमेरिकी सपने के संघर्ष का केंद्रीय अर्थ है। समान प्रतिभा और परिश्रम के बावजूद अवसर जन्मस्थान और आव्रजन स्थिति से असमान रूप से बंटे रहते हैं। डेविस एरिजोना के कठोर होते राजनीतिक वातावरण तथा मैक्सिकन प्रवासियों के प्रति शत्रुता को निजी अनुभवों से जोड़ते हैं। इसलिए नीति यह दूर की बहस नहीं, बल्कि परिवारों के निर्णयों, बच्चों के भय और भविष्य की सीमाओं को आकार देने वाली ताकत है। पुस्तक का महत्वपूर्ण संतुलन यह है कि वह इन युवाओं को केवल पीड़ित के रूप में सीमित नहीं करती। वे कुशल, महत्वाकांक्षी और निर्णय लेने वाले व्यक्ति है, पर उनकी स्वायत्तता पर कानूनी ढांचे की सीमाएं वास्तविक है। यह दृष्टि पाठक को प्रेरक उपलब्धि से आगे बढ़कर यह प्रश्न पूछने को कहती है कि किसे शिक्षा और प्रतिभा के फल तक स्थिर पहुंच मिलती है। चौथा, प्रतियोगिता के बाद का जीवन और एक जीप की सीमाएं। कई अंडरडॉग कथाएं निर्णायक पुरस्कार पर समाप्त हो जाती है, लेकिन डेविस उस सुविधा से बचते हैं। प्रतियोगिता में जीप के बाद भी चारों युवाओं का जीवन एक समान दिशा में नहीं बढ़ता। पुस्तक उनके आगे के अनुभवों में उच्च शिक्षा, जीविका के लिए संघर्ष, निर्वासन, मेक्सिको में काम और सैन्य सेवा जैसे अलग रास्तों को दर्ज करती है। यह संरचना पुस्तक के तर्क को अधिक ईमानदार बनाती है। राष्ट्रीय पहचान मिलने से क्षणिक अवसर और आत्मविश्वास मिल सकते हैं, लेकिन उससे कानूनी दर्जा, पारिवारिक आय और सामाजिक सुरक्षा जैसे ढांचागत प्रश्न हल नहीं होते। इसलिए जीत को अंतिम मुक्ति मानना वास्तविक जीवन की जटिलता को मिटा देना होगा। पाठक देखता है कि व्यक्तिगत दृढ़ता का महत्व है, लेकिन उससे व्यवस्था की बाध्यताएं अदृश्य नहीं हो जाती। आगे के जीवन का विवरण उन लोकप्रिय धारणाओं को चुनौती देता है जिनमें प्रतिभा को अपने आप ऊपर उठने का पासपोर्ट समझ लिया जाता है। साथ ही यह किशोर उपलब्धि को कमतर भी नहीं करता। रोबोटिक्स अनुभव ने इन युवाओं को क्षमता का प्रमाण, संबंधों का नेटवर्क और अपने भविष्य की कल्पना करने की भाषा दी। पुस्तक का निष्कर्ष यह नहीं कि प्रयास व्यर्थ है, बल्कि यह है कि शिक्षा और प्रशंसा को टिकाऊ अवसर में बदलने के लिए अधिक न्यायपूर्ण संस्थागत समर्थन आवश्यक है। अंत में पत्रकारिता कथन में विज्ञान, परिवार और एरिजोना की राजनीति का मेल, जोशुआ डेविस की पद्धति स्पेयर पार्ट्स को केवल विज्ञान केंद्रित पुस्तक या केवल आवर्जन वृत्तांत होने से बचाती है। वे प्रतियोगिता की तैयारी को चार छात्रों और उनके परिवारों की पृष्ठभूमि, वेस्ट फीनिक्स की आर्थिक परिस्थितियों, कार्ल हेडन विद्यालय की चुनौतियों और एरिजोना की राजनीतिक बहसों के साथ बुनते हैं। इस ढांचे का लाभ यह है कि रोबोटिक्स को सामाजिक संदर्भ से काटकर नहीं देखा जाता। कोई छात्र विद्यालय तक कैसे पहुंचता है, घर में किस तरह की आर्थिक जिम्मेदारियां हैं, अंग्रेजी और तकनीकी शिक्षा तक उसकी पहुंच कैसी है और पुलिस या आवर्जन व्यवस्था का भय कितना निकट है, ये सभी बातें प्रतियोगिता में भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। डेविस का पत्रकारिता से निकला सीधा दृश्यात्मक कथन पाठक को तकनीकी विवरणों में खोने नहीं देता। फिर भी वह रोबोट को केवल प्रतीक बनाकर नहीं छोड़ते, क्योंकि डिजाइन और परीक्षण की वास्तविक समस्याएं टीम के चरित्र को दिखाती हैं। पुस्तक की सीमा भी इसी व्यापकता में है। यह नीति का विधिक इतिहास नहीं और न ही रोबोटिक्स का पाठ्य पुस्तकीय परिचय है। इसका उद्देश्य मानव अनुभव के माध्यम से इन विषयों की परस्पर निर्भरता दिखाना है। इस कारण यह पाठक को राजनीतिक नारेबाजी के बजाय व्यक्तियों के जीवन पर नीतियों के ठोस प्रभावों पर विचार करने का आधार देती है। निष्कर्ष में, स्पेयर पार्ट्स उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो एसटीएम शिक्षा, अमेरिकी आव्रजन, किशोर विकास या सामाजिक असमानता को किसी अमूर्त बहस के बजाय वास्तविक लोगों के अनुभवों से समझना चाहते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों को इसमें कम संसाधनों में डिजाइन, सहयोग और मार्गदर्शन के व्यावहारिक संकेत मिलेंगे। नीति, शिक्षा या समुदाय के क्षेत्र में काम करने वाले पाठकों के लिए यह याद दिलाती है कि प्रतिभा की पहचान और उसे आगे बढ़ाने वाली संस्थागत पहुंच अलग चीजें हैं। पुस्तक का बौद्धिक लाभ इसकी दोहरी दृष्टि में है। एक तरफ यह स्टिंकी जैसे साधारण कार्यक्षम समाधान की अभियांत्रिकी समझ दिखाती है, दूसरी तरफ यह पूछती है कि ऐसे समाधान बनाने वाले युवा भी नागरिकता, आय और सुरक्षा की अनिश्चितताओं से क्यों घिरे रहते हैं। समान प्रकार की प्रेरक खेल या विज्ञान प्रतियोगिता वाली कथाओं से इसका अंतर यही है कि डेविस जीत को अंतिम अध्याय नहीं मानते। वे बाद के जीवन की आसमान, कभी कठिन दिशाओं को भी शामिल करते हैं। इससे उपलब्धि की चमक बनी रहती है, लेकिन उसके आसपास का सामाजिक ढांचा भी स्पष्ट होता है। पत्रकारिता की सुलभ गति, तकनीकी चुनौती की ठोसता और आव्रजन नीति के मानवीय परिणामों का संयोजन इसे व्यापक पाठक वर्ग के लिए अलग बनाता है। यह पुस्तक न तो केवल विजयगाथा है, न केवल व्यवस्था की आलोचना। यह दिखाती है कि व्यक्तिगत कौशल और सामूहिक सहारा महत्वपूर्ण है, मगर समान अवसर के लिए कानून, विद्यालय और समाज की जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जोशुआ डेविस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।